मुलिया 18 जनवरी 94 ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। स्नेह की शक्ति के वरदान द्वारा असंभव को संभव बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा बोले। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर के पास समान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्वस्नेही बच्चे समाये हुए। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। तो बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। दूसरा, स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में वो जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। तो दूसरा है, देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला जाता स्नेह में। तीसरा, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है, सहज समर्पण। चौथा, स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। पांचवा, स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। छठवा, स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। असंभव को संभव कर देता है। स्नेह निष्फल प्रतिबल निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत कर रही है। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन में आदि समय को अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना, तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए, सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। फिर आगे का, कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप या रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति शिव मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो मीठे बाबा प्यारे बाबा तो डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है। समा जाओ तो तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना आता है, स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं है? है कोई? फिर आगे है, स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। तो ये 18 जनवरी की मुरली है। बाबा स्नेह की शक्ति से क्या क्या होता है वो कह रहे हैं। सबसे पहला तो स्नेह की शक्ति मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर देती है, मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है, यह अनुभव कराती है। अगर बहुत प्यार है तो कितना भी मेहनत वाला काम है सहज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तो ये कार्य। दूसरा, भुलाने का,
देह की दुनिया।
वैसे अगर देह और देह की दुनिया को भुलाने की कोशिश करो तो बहुत मुश्किल है, परंतु यदि कोई स्नेह में खोया हुआ है तो ये देह का भान स्वतः ही भूल जाता है, इतना स्नेह में शक्ति है। पर जैसा कल जो स्वार्थ शब्द कहा गलत हाथों में पड़ गया है, वैसे स्नेह गलत हाथों स्वार्थ, वैसे इस संसार का सबसे अधिक मिसअंडरस्टूड शब्द जो है, सबसे अधिक वो है स्नेह या प्रेम। जितना लोगों ने उसको गलत समझा है उतना शायद इस संसार में या भाषा में ऐसा कोई और शब्द होगा जिसको समझा गया है मोस्ट, जिसको कहा जा सकता है मिसअंडरस्टूड। सबने इसकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा बनाई। किसी ने देह के तल पर, बुद्धि के तल पर, मन के तल पर, कल्पना के तल पर, तो स्नेह एक ऐसा शब्द है। और बाबा यहाँ जो स्नेह की बात कर रहे हैं वो सर्वोच्च स्नेह की बात कर रहे हैं। ये स्नेह क्या करता है, देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देता है। पहले तो मेहनत को सहज कर देता है, मोहब्बत में परिवर्तन कर देता है। दूसरा, देह और देह की जो दुनिया है वो विस्मृत कर देता है, भुला देता है। क्योंकि जब तक वो नहीं भूलता है तब तक अध्यात्म की यात्रा चालू नहीं होती, भूलना पड़ेगा। तीसरा, सहज समर्पण करा देता है परमात्मा के प्रति। समर्पण सर्वोच्च समर्पण है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, सर्वोच्च सत्ता के प्रति, बाप समान बना देता है। स्नेह की शक्ति, बाप समान बनाने का आधार भी क्या है, स्नेह। जिसका जितना अधिक स्नेह था वो उतना आगे बढ़ गए, जिसके पास जितना अधिक ज्ञान था वो नहीं, ज्ञान से भी ज्यादा आगे कौन निकल गए थे पहले, स्नेह प्यार। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। परमात्मा साथ भी कहाँ अनुभव होता है, स्नेह के आधार से। जितना उससे अधिक प्रेम उतना उसके साथ का अनुभव होता है, वो सदा हमारे साथ चल रहा है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। जितना हमारा उससे स्नेह, रिटर्न में वही मिलेगा, याद के रिटर्न में याद, याद से याद मिलती है बाबा कहते हैं। वैसे स्नेह जितना उतना उससे भी स्नेह मिलेगा। तो उसकी बाप की दुआओं का हाथ, परमात्मा की दुआएं, स्वयं स्वयं की दुआएं और आत्माओं की दुआएं, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट कब मिलता है, जब हम स्नेह में समाये या उसकी श्रीमत पर चलते हैं, जो उसने कहा वो करते हैं। तो सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। उसकी दुआएं जैसे हमारे साथ है, हम नहीं चल रहे वो चला रहा है, यह स्पष्ट अनुभव। ऐसे कई सारे कार्य है जो हमको लगेगा कि हम कर ही नहीं सकते थे, फिर बाद में जब देखा पीछे मुड़कर तो पता चला ये उसका कार्य था, हमने नहीं किया, वो हम में इतनी शक्ति नहीं थी ये सब करने की, वो था करके हो सका। ये परिस्थिति इतनी विकराल थी कि हम अकेले उसे पार ही नहीं कर सकते थे, वो था इसके लिए हम उसे पार कर सके। फिर स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। असंभव को संभव कर देना, जो कार्य सोच भी नहीं सकते थे कि हो सकता है, असंभव जैसा कार्य था, परंतु स्नेह किया तो हो गया संभव। हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है, हर समय। संसार की आत्माओं की स्थिति चिंता की स्थिति है, निरंतर एक चिंता है, कल क्या होगा, आज क्या होगा। जो मुंबई में रहने वाले हैं उन्हें डर रहता है शाम को घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, सुबह निकल गए तो पता नहीं क्या हो सकता है, आएंगे या नहीं आएंगे, एक अनिश्चितता की अवस्था है। तो यहाँ तो जैसे बाबा कहते हैं निष्पल निश्चिंत, हर पल प्रतिपल हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। जो भी कर्म करेंगे वो उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी, यह अनुभव। तो बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। जो भी आत्माएं हमारे पास आती है वो थकी हुई आती है, भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्मा होने के कारण मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे बंधन है आत्माओं, इतने बंधन है कि सोच भी नहीं सकते, जिनका अभी हमने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया था। हमें तो पता ही नहीं ये भी बंधन होता है, और वो आत्मा उन बंधनों में फंसी है, हमें अनुभव ही नहीं है उस बंधनों का। जैसे कोई सिगरेट पीता है, किसी को कोई व्यसन है, अभी जिसने पिया ही नहीं उसको क्या अनुभव उस चीज का, उसके लिए वो अस्तित्व ही नहीं है। परंतु दूसरा एक व्यक्ति है उसके लिए वो व्यसन है, आदत है, उसके सिवा वो रह नहीं सकता। ऐसे ऐसे संसार में बंधन है, जबरदस्त संबंधों के बंधन तो ऐसे है कि जिसमें व्यक्ति फंसा रहता है, उड़ ही नहीं सकता वो बंधनों पे, जीवन भर कभी नहीं छूट सकता। और दूसरे प्रकार के बंधन है शास्त्रों के बंधन, शास्त्र की बेड़िया इतनी कड़ी है कि छूट नहीं सकती। गुरुओं के बंधन, ऐसे गुरुओं में फंसे हुए हैं चाहे उस गुरु के विरुद्ध बहुत सारे आरोप भी हो जाए परंतु गुरु को नहीं छोड़ेंगे, इतनी श्रद्धा है उनमें, उतनी निष्ठा है उन गुरुओं में। कल यहाँ जो गुरुकुल है ना, गुरुकुल वहां हम लोग गए थे, तो वहां पर एक वहां के जो आर्य समाज के हैं वो मिले, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आचार्य है कोई वहां पे, बहुत लोग हैं वहां, तो फिर वो चर्चा करने लगे, परंतु जिस भाव था उनका, हाँ, तो हमने कुछ भी नहीं कहा, फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा आप बताओ तो एक एक बात पूछने लगे, एक एक बात पूछने लगे, धर्म की बोलो अनादि कौन सी चीजें है थीं, मैंने कहा आप बताओ क्योंकि उनका जो भाव था वो तर्क वितर्क था। हाँ, पहले से वो बहुत कुछ जानते थे धर्म क्या है, फिर बहुत सारी बातें बताने लगे, सत्यार्थ प्रकाश में क्या क्या लिखा हुआ है, मैं तुमको दूंगा पढ़ना उसको, मैंने कहा ठीक है मोबाइल में है सत्यार्थ प्रकाश मैंने कहा दे देना मैं पढ़ लूंगा। फिर उसके एक एक अध्याय में क्या है, पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ है, उसमें पहले अध्याय में ईश्वर के नामों के बारे में, मैंने कहा आप बताओ, तो वो बताने लगे ईश्वर का नाम क्या है, ओम है, फिर ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम क्यों है, इतने नाम क्यों है, ईश्वर कहाँ रहता है, वो सर्वव्यापी कैसे है, अविनाशी सत्ता है कौन कौन सी, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, फिर भारत का पतन कैसे हुआ, फिर ऐसे एक एक करके एक एक नई नई बातें बताने लगा, फिर गांधी कौन था, फिर गांधी भी मुसलमान था, मैंने बोला अच्छा फिर नेहरू भी मुसलमान था, मैंने बोला अच्छा आप क्या समझते हो, मैंने कहा इतिहास तो कहते हैं उनके पिताजी का नाम ये था, इतिहास कहता है, ऐसे कहा मैंने क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे, हर प्रश्न में एक क्या कहते हैं उसको, विरोधाभास जैसा था ना, मैंने कहा आप ही बताओ, तो वो बताना ही चालू करे, बताना चालू, मैंने कहा अभी मुझे जाना है फिर वो भारत का पतन कैसे हुआ, सम्राट अशोक ने अगर बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कर लिया होता तो भारत इतना नपुंसक नहीं बन गया होता, तपुंसक नहीं बना होता। ऐसी एक 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 बातें, धर्म की बातें, शास्त्रों की बातें, पीपल के वृक्ष के बारे में, उसमें भी नर मादा होती है, आपको पता है मैंने कहाँ बताया? तो ऐसी इतनी बातें बता रहा था, तो मैं तो खाली सुन रहा था और उसको सकाश दे रहा था। क्योंकि अगर एक बात में भी पकड़ लो और उससे चर्चा करो तो 10 घंटे तक भी चर्चा चलेगी वो, तो ऐसी शास्त्रार्थ हो जाएगा वो शास्त्र का। क्योंकि उनका उन्हें पहले से बहुत सारी बातें पता है, उनका लक्ष्य सीखना नहीं है, विरोध है, सिखाना है। मैंने कहा जैसे ही कहा आप सुनाओ तो तुरंत सुनाना चालू कर दिया, हाँ हराने के लिए। वहां पर जो वो हिंसा का भाव है, आध्यात्मिक हिंसा कहते हैं इसे। हाँ हाँ धर्म, ये शास्त्रों के बंधन है, इतनी फंसी हुई है आत्मा शास्त्र। क्योंकि आर्य समाज जो है वो केवल वेदों को मानता है, पुराणों को भी नहीं मानता, केवल वेद। वेद ही श्रुति और स्मृति, ऐसे दो चीजें हमारे शास्त्रों में। श्रुति अर्थात वेद, चार वेद है वही सत्य है। उसमें मूर्ति पूजा का संपूर्ण खंडन किया है वो लोगों ने, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं, भक्ति बिल्कुल नहीं, संन्यास बिल्कुल नहीं। संन्यास का भी विरोध है एक रीति से, अलग रीति से। किसी पुराण को नहीं मानते, वो पुराण को स्मृति कहा जाता है। स्मृतियां जो है वो सेकंड लेवल पे है, सबसे ऊंच है श्रुति। श्रुति अर्थात चार वेद। तो ये जो वेदों के भी बंधन है, उसमें जो लिखा है वही संपूर्ण सत्य है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब है, वो उनका मुख्य ग्रंथ है, उसी पर ही सब कुछ है, 14 अध्याय है उसके। परंतु उसमें भी एक चीज लिखी है जो शायद उनको भी नहीं पता, उसमें वो मुझे बताया था, पहले अध्याय में क्या है पता है, दूसरे अध्याय में क्या है पता है, तीसरे अध्याय में क्या है पता है, 14 में, अच्छा पहले उसमें 10 पहले अध्याय वो एक रीति से है और अंतिम 4 अध्याय अलग रीति से है। तो वो होने के बावजूद, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने वहां पर एक लाइन लिखी है, ये जो मैंने कुछ लिखा है अपनी बुद्धि के तर्क पर लिखा है, हिसाब से लिखा है, अगर मुझसे भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए और मैंने जो कुछ लिखा है उसका अगर खंडन कर दे तो तुम उसकी बात को मानना, ये बात भी लिखी है उसमें। सर वो लोग वो बात को नहीं पढ़ते। वो कभी नहीं मानेंगे अपने ज्ञान को। कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं नहीं जानता भाई, मेरा ज्ञान सत्य है आपका। वो तो ब्रह्मा कुमारी इसका विरोध कहते हैं, हाँ हम जानते हैं दादा लेखराज को, पता है सब। ऐसे भी कह रहा था, इधर ही रहता था, हमारे पास भी आता था, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, शायद बाबा को भी देखा है उसने। हमने सुना है, बहुत सुना है, ये होता है वहाँ वो होता है। मैंने बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, अभी जाऊँ? हाँ ठीक है, बाद में आना। मैं कहूँ बाद में आऊंगा किताब लेने।
दिया नहीं किताब।
मैं रुका ही नहीं। शास्त्रों के इतने कड़े बंधन हैं, बहुत जबरदस्त बंधन है, कैसे छूटेंगे उसकी आत्मा? ये इतना पूरा संपूर्ण वही सत्य है, ऐसा जिसकी धारणा है, हम जिस मार्ग पर है बस वही मार्ग है। सब इस संसार में हर एक अपनी अपनी मशाल लिए चल रहा है और सोचता है मेरी मशाल का जो प्रकाश है सर्वोच्च है। अगर ये प्रकाश नहीं हो तो संसार में अंधेरा छा जाएगा। वो उस संपूर्ण जो एक जगत में जो आलोकित प्रकाश है उसको नहीं देख पा रहे, ऐसे सोचते कि हमारे मशाल की वजह से जगत प्रकाशित है। परमात्मा के कर्तव्य क्या है वो मुझे पूछ रहा था, कि आपको पता है परमात्मा के भी कुछ कर्तव्य होते हैं? मैंने कहा नहीं, आप बताओ। जी वाला तो बड़ा खुश हो गया। फिर भी पूरा नहीं होगा, शास्त्रों का ज्ञान ऐसा है, शास्त्रों से शास्त्रे वादी वयम भरतरी भरतरी ने लिखा हुआ है, भरतरी वैराग्य शतकम है, उसमें लिखा है रूपे जराय वयम, जो रूपवान है उसको बुढ़ापे का भय है। वृत्तनुपालक भयम, जो राजा है उसको जो इनकम टैक्स वाले जो है उनका भय है। गुणे खल भयम, जो बहुत गुणवान है उसको निंदा करने वाले का भय है। और जिसने बहुत शास्त्र पढ़े शास्त्र वादी भयम, उसको कभी भी वाद विवाद का भय है क्योंकि जिसने बहुत शास्त्र पढ़े और उसका तुरंत कोई विरोध करे तो रुक नहीं सकता है। कोई चुनौती फेंक दे कि ये तुम्हारा गलत है तो वहां तो जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है, कैसे भी करके उसको हराना है। बाकी सब छोड़ देगा व्यक्ति, पद पोजीशन सब छोड़ देगा, पर यहाँ पूरी दाव लगा देगा अपने जीवन का कि इसने गलत कैसे कहा उनको। शास्त्र वादी भयम, सर्व वस्तु भयान्वित, इस संसार की हर वस्तु भय में भय समाया है। और आगे की लाइन है केवल वैराग्य ही ऐसा है जिसमें भय नहीं है। तो शास्त्रों के भी बंधन है, बाबा कहते हैं हर बंधन से छुड़ाने का साधन है स्नेह। परमात्मा प्रेम एक ऐसा, ये भी एक बंधन है, परंतु ये ऐसा बंधन है जो बाकी सारे बंधनों से छुड़ा देता है। ऐसा एक मीठा बंधन है जिसका कोई बोझ नहीं है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है। ये स्नेह अगर जिसके हृदय में भर जाए वो स्नेह बांटता है सबको, ऐसा ये बंधन है। तो बाबा कहते हैं तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना, तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए, सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो, स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। फिर आगे है कितनी भी कोई बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसी भी माया का विकराल रूप या रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छु मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, शिव सागर से मिलन मनाओ। सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ, ये जो सागर है इसमें समा जाओ। श्री रामकृष्ण ने विवेकानंद को कभी पूछा था, वो चाय का एक चाय था या क्या था, चाय ही था, एक कप में चाय था, तो उस पर बाजू में एक मक्खी थी बैठी हुई, ऐसे घूम रही थी। तो उसने कहा था तुम क्या बनना चाहते हो, ये मक्खी बनना चाहते हो और यहाँ घूमना चाहते हो कि पूरा इस सागर में डूब जाना चाहते हो। उसने कहा था मुझे मक्खी बनके इधर बाजू में केवल घूमना है डूबने से डर लगता है, परंतु जब तक हम डूबते नहीं है उसका अनुभव ही नहीं होता है। सागर के तले में, कल भी कहा ना बाबा ने अदर कुमारों से, सागर की गहराई में जाओ तो रत्न मिलेंगे। तो इस स्नेह में भी समा जाओ, डूब जाओ तो रत्न मिलेंगे। तो समा जाओ तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे, अंदर अंडरग्राउंड हो जाएंगे ना। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है, स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो, है कोई? ज्ञान भले नहीं है बुद्धि में परंतु स्नेह तो बहुत है। स्नेह में सब बाबा कहते हाँ, स्नेह के कारण ज्ञान में आते हैं। हाँ, स्नेह प्यार यही खींच के लाता है। कितनी आत्मा आए तो बस टोली के कारण ही ज्ञान में आई है, बाकी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं था। स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। इसको याद कर लो हमेशा के लिए, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। गीता में भी कहीं ऐसा एक श्लोक आता है कि अब तक ये जो मैंने सुनाया तुमको इसे मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अतिरिक्त और संसार में जो भी है सब अज्ञान है। तो स्नेह में समा जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे बाबा ने कई जगह अलग अलग वाक्य आते हैं कि ये संपूर्ण ज्ञान है। जैसे कल था ना अनुभव स्वरूप संपूर्ण ज्ञान, वैसे निकाल सकते हैं हम आत्माभिमानी स्थिति ही संपूर्ण ज्ञान है। और भी कुछ है बाबा के महावाक्य पर ढूंढने पड़ेंगे, है ऐसे बहुत सारे। तो यहाँ है सर्व सबसे सुंदर महावाक्य, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। जगदीश भाई ने कोई अनुभव एक शायद लिखा है कहीं कि एक बार एक पुलिस आ गया, बाबा जब मुंबई आए तो एक व्यक्ति था ऑफिसर जो बहुत ही विरोधी था, उसने बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस को भेज दिया साइकिल लेके वो भी। तो वो सेंटर पर आया दिल्ली के, तो कहाँ है तुम्हारे बाबा, वारंट निकला है तुमको पकड़ के लेके जाना है। तो जो भाई बहने थे वो डर गए, तो उन्होंने कहा नहीं बाबा तो अंदर है, नहीं बोले बुलाओ उनको, नहीं उन्होंने कहा फिर बहाना बनाने बाबा की तबीयत ठीक नहीं, तो बोले तबीयत ठीक नहीं तो क्या मैं साइकिल पे बिठा के ले जाऊंगा। वो साइकिल लेकर आया था पुलिस। हाँ ऐसे बीमार है ये है, अलग अलग बहाने बनाए और उसको रवाना किया। जब बाबा को पता चला तो बाबा ने कहा अरे वो बच्चा मुझे लेने आया था, आपने झूठ बोला। वो हर एक को उस भाव से देख रहे, बेहद की दृष्टि से, वो ये देख ही नहीं रहे कि ये पकड़ने आया है। हाँ वो अगर बोलते तो आप लोग तो झूठे हो जाते, अगर आप कहते अगर वो आके देखता था कि बाबा तो ठीक है और आपने बोला वो बाबा बीमार है तो उठ नहीं सकता, तो आप तो झूठे हो जाते थे ना। तो ये ऐसी स्नेह की ऐसा आत्मा छोटे छोटे बंधनों से छूटकर इस उच्च स्तर पर पहुंच गई है कि वहां उसे कोई विरोधी लगता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये विरोध कर रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि ये हमारा विरोधी है, ये हमारा आलोचक है निंदक है, जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। ये भाव बहुत ऊंची अवस्था है मन की। तो आज के दिन का महत्व भी स्नेह है, आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो, बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो ना। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा, सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी, तो सहज कैसी बनी स्नेह के कारण। अभी एक नया किताब निकला है सेकंड पार्ट टू भाग्य विधाता का, आया है ना नया, उसमें बहुत सारी आत्माओं के अनुभव है ब्रह्मा बाबा के साथ। पहला तो निकला हुआ है भाग्य विधाता पार्ट वन, अभी नया किताब आया है पार्ट टू स्नेह के कारण, तो उसमें ब्रह्मा बाबा के साथ के सबके अनुभव है। तो क्या सिर्फ आज का दिन, उसमें एक बहुत अच्छी चीज है, रमेश भाई के साथ कभी बाबा थे तो कहीं घैंगिंग गार्डन है मुंबई में, वहां गए, वहां पर एक बहुत ही नामी ग्रामी व्यक्ति आया और ब्रह्मा बाबा से पूछा आप कौन है, मतलब आप कौन हो। तो जो उत्तर बाबा ने दिया सुनकर वो अवाक रह गया, उन्होंने कहा मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ जिसके तन में परमपिता शिव अवतरित होकर अभी इस संगम युग के समय पर गीता ज्ञान सुना रहे हमें सतयुग के देवी देवता बनाने के लिए। ये उत्तर दिए जब पूछा कि आप कौन हो तो वो चुप ही हो गया, अवाक रह गया ऐसे उत्तर सुनकर। तो संगम युग है परमात्मा स्नेह का युग, तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थाली भर कर दे रहा है, भर भर कर दे रहा है। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थाली भर कर दे रहा है, तो अपने को सदा भरपूर करो, स्नेह से इतना भर दो कि जो निकले वो स्नेह ही हो, घृणा उसमें हो ही नहीं, घृणा का अंश भी ना हो उसमें, जैसे कल कहा ना रोप का अंश भी नहीं हो। क्यों गिरा, गिरना ही था, हिसाब किताब है कर्मों का, हिसाब किताब जो किया वो पा रहे हैं। क्यों हुआ, ये सब रोप के अंश है, क्यों हुआ, ज्ञान यह कहता है रहम दिल संपन्न दाता। तो अपने को सदा भरपूर करो, थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, थोड़ा सा अनुभव हुआ तो खुश हो जाते और वहीं रुक जाते। ये मार्ग ऐसा है कि बढ़ते जाओ आगे, बढ़ते जाओ आगे, जितना आगे बढ़ोगे उतने रत्न मिलेंगे, हीरे मिलेंगे, रुकना नहीं है। संपन्न बनो, भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे, ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। तो सदा अपने को स्नेह से भरपूर करो, इतना भरपूर करो कि स्नेह ही बरसे। एक बार दिखाया है, महात्मा बुद्ध समाधि में लीन है और एक व्यक्ति आया जो उनका बहुत पहले से परिचित था, परंतु अब पता नहीं कहीं से सुना होगा इसके विरोध में, तो घृणा जाग उठी इनके विरोध में हो गया। और आया और इतना क्रोधित था, इतना क्रोधित था, इतना क्रोधित था कि आकर सीधा मुंह पे थूक दिया। उन्होंने कपड़े से थूक को साफ कर लिया और उनका जो शिष्य था आनंद, वो तो एकदम क्रोध से भर गया। फिर बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, और कुछ कहना है? तो आनंद को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, बोले अभी और क्या कहना बाकी रह गया उसको, इतना तो आपके ऊपर थूक दिया और वो व्यक्ति चला जाता है। तो बुद्ध कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि उसमें क्रोध इतना था कि वो अपने भाव को शब्दों में नहीं प्रकट कर रहा था, इसके लिए उसने सीधा कर्म किया। अब ये जो व्यक्ति है, रात भर सो नहीं पाया, फिर उसको लगा कि ये पता नहीं मैंने कहां से क्या सुन लिया और इतना क्रोध आ गया, इनके ऊपर थूक दिया, शायद अब इनका मेरे ऊपर प्रेम करना बंद हो जाए। तो दूसरे दिन आ जाता है, सीधा चरणों में गिरता है और रोने लगता है और माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, शायद मैंने कल आपके ऊपर थूका तो आप मुझसे प्रेम करना बंद हो गए, कर दिया होगा। तो बुद्ध कहता है, और कुछ कहना है? तो आनंद बाजू में बैठे रहता है, वो कहता है, कमाल है आपकी भी, कल जब आपके ऊपर थूका तो कहते और कुछ कहना है क्या, अभी जब चरणों में सिर रख दिया तो कहते और कुछ कहना है क्या। तो वो कहता है कि कल का भाव इसका दूसरा था, आज का भाव इसका दूसरा है, आज एक शुभ मुख से कुछ कह नहीं पा रहा है क्योंकि इसके लिए चरणों में सिर रख दिया, परंतु मेरा जो स्नेह है वो इतना छोटा नहीं है, इसके थूकने से या इससे कोई लेना देना नहीं है उस स्नेह का। ये स्नेह तो दीपक की भांति है जो जलता ही रहता है, जो भी सामने से गुजरेगा उस पर वो दीपक का प्रकाश पड़ेगा, अगर नहीं गुजरे तो एकांत में दीपक जलता रहेगा। किसी के थूकने से या किसी के पैरों में गिरने से उसके प्रति स्नेह कम हो जाना या स्नेह बढ़ जाना नहीं है, स्नेह तो है ही और सबके प्रति है, क्योंकि मैं उस अवस्था तक पहुंच गया हूं कि हृदय में केवल स्नेह के अतिरिक्त अब और कुछ है ही नहीं, इतना स्नेह भर गया है। तो ये द्वापर युग की आत्माओं की बात है, तो हमें भी अपने अंदर स्नेह को इतना भरना है कि वो स्वतः ही बाहर निकले, झलके। अच्छा, ओम शांति।